मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2019 है और आज के इस afias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने एक अंश चुना है जो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। बीच बीच में इसके स्वाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते रहना चाहिए और उसी के तहत मैं एक पुस्तक है, एक नई पृथ्वी, जो एकहार्ट टॉल की लिखी हुई है। बहुत अच्छे राइटर है, बहुत अच्छे फिलोसफर विचारक माने जाते हैं। इस किताब का एक छोटा सा अंश है जो मूलतः एक कहानी नुमा है और सच्ची घटना पर आधारित है। मुझे ये अंश बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस अंश को मुझे अपने प्रिय श्रोताओं तक पहुंचाना चाहिए, तो मैं वह अंश आप लोगों को पढ़कर सुना रहा हूं। और आप लोगों को इस बात की पूरी आजादी है कि इस अंश का आप अपनी अपनी तरफ से अर्थ निकालें, अपनी अपनी तरफ से भावार्थ ग्रहण करें और अपने अपने ढंग से इस अंश का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने का अर्थ यह है कि अपने जीवन में इसका उपयोग करें। हां, मैं अपनी तरफ से हो सका तो आखिरी में जरूर छोटी सी टिप्पणी देना चाहूंगा। देखिए अंश क्या है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। जापान के एक शहर में जैन गुरु हाकुइन रहते थे। जो जैन गुरु जो कहते हैं, देखिए ये जैन है बेसिकली, झ च छ ज झ, जैन गुरु। ये कहा जाता है कि भारत में जो ध्यान की परंपरा थी, जो मेडिटेशन की परंपरा थी, वही जापान में पहुंचते पहुंचते ध्यान ही जेन बन गया। तो जो इस परंपरा को स्वीकार जिन लोगों ने किया तो एक पूरी की पूरी एक ट्रेडिशन बन गई और वो ध्यान शब्द बदलकर जेन हो गया। और नो डाउट कि इन्होंने अपने ढंग से अपनी मिट्टी के स्वरूप को देखते हुए, उसकी गंध को पहचानते हुए अपने यहां इसमें बहुत परिवर्तन भी किया है। तो यहां जेन गुरु को मुझे लगा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि जैन गुरु कहने का क्या मतलब। हमारे यहां जो संत फकीर होते हैं उसने उन्हें आप मान लीजिए कि जापान जब जाएंगे तो शायद जैन गुरु कहने लगे, बिल्कुल फकीर अंदाज में रहने वाले लोग। जापान के एक शहर में जैन गुरु हाइकुन रहते थे। उनकी बहुत इज्जत थी और अनेक व्यक्ति उनके पास आध्यात्मिक शिक्षा के लिए आते थे। फिर ऐसा हुआ कि उनके पड़ोस की युवा लड़की गर्भवती हो गई। जब गुस्से में भरे उसके माता पिता ने उसे डांटा और पूछा कि बच्चे का पिता कौन है, तो अंत में उसने उन्हें बताया, उन्हें यानी कि अपने पिता को बताया कि जैन गुरु हाइकुन हैं। वे बहुत गुस्से में हाइकुन के पास पहुंचे और चिल्ला चिल्ला कर आरोप लगाने लगे कि उनकी बेटी ने स्वीकार किया है कि होने वाले बच्चे के पिता आप ही हैं। उन्होंने केवल इतना कहा, उन्होंने यानी कि जैन गुरु हाइकुन ने, क्या ऐसा है? इस कलंक की खबर पूरे शहर और बाहर भी पहुंच गई। गुरु की ख्याति खत्म हो गई। इससे वे परेशान नहीं हुए, उन्हें देखने अब कोई नहीं आता था, वे विचलित भी नहीं हुए। जब बच्चे का जन्म हुआ तो युवती के माता पिता बच्चे को हाइकुन के पास लाए। आप इसके पिता रहे हैं, इसलिए इसकी देखभाल आप करें। गुरु ने बच्चे की बहुत प्यार से देखभाल की। एक साल बाद युवती ने पश्चाताप में अपने मां बाप के सामने स्वीकार किया कि बच्चे का असली बाप कसाई की दुकान पर काम करने वाला एक जवान आदमी है। वे बहुत दुखी होकर हाइकुन के पास गए और गलतियों के लिए क्षमा मांगी। हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं, हम बच्चे को वापस ले जाने के लिए आए हैं। मेरी बेटी ने स्वीकार किया है कि आप बच्चे के पिता नहीं हैं। क्या ऐसा है? बच्चे को वापस करते समय गुरु हाइकुन ने केवल इतना ही कहा, क्या ऐसा है? मित्रों, एक बहुत छोटी सी कहानी है, हालांकि आपको बड़ी बोरियत सी लगेगी, बड़ी उथली सी लगेगी, सतही सी लगेगी, और जैसे ही कहानी खत्म हुई तो आप शायद चौंके होंगे कि ये क्या मतलब हुआ, क्या सच में कहानी खत्म हो गई? और अगर यही खत्म हो गई तो फिर ये कहानी क्या हुई, ये क्या मतलब हुआ? लेकिन जब आप इस पर सोचेंगे तब इसमें आपको बहुत सारे आपको अमूल्य रत्न मिलेंगे और वही निकालने का काम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप निकालिए, इसमें डुबकी लगाइए। नो डाउट मैं भी मानता हूं कि यह बहुत रूखा सूखा सा अंश है, इसमें आपको कहीं उस तरह की रोचकता, रोमांचकता और सुखद स्थिति महसूस करने का अवसर नहीं मिला होगा, लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ी रचना है, बहुत बड़ी और बहुत सच्ची और बहुत गहरी कहानी है। देखिए इसमें बात क्या कही गई है जो मैं अपने ढंग से एनालाइज करना चाहूंगा। देखिए हाइकुन पर आरोप लगाया गया और बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया जिसे सुनकर कोई भी तिल मिला जाएगा अगर यह आरोप झूठा है तो, और वो हाइकुन जैसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक जगत में काम कर रहे हैं, जिनकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है और उन पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन जब उन पर आरोप लगाया गया तो देखिए उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया उसका, उन्होंने पूछा कि अच्छा क्या ऐसा है, मतलब वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं कि हां ऐसा है। देखिए जो इसमें जो पूरी जान है इसके, जो इसका जो केंद्र है इस पूरी के पूरी स्टोरी की जो आत्मा है वह है क्या ऐसा है। वो विरोध नहीं कर रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, पूछते हैं कि क्या ऐसा है, अगर ऐसा है आप लोग समझते हैं तो ठीक है मैंने ऐसा किया, तो बच्चे को भी छोड़ करके चले जाते हैं। बच्चे के साथ उनका कोई द्वेष नहीं है, वो बकायदे बच्चे को पालते हैं पोसते हैं, और फिर उस पाले पोसे हुए बच्चे को जब वापस लेने के लिए आते हैं तो वो भी उसे सौंप देते हैं और यही कहते हुए पूछते हुए क्या ऐसा है। इसका अगर हम फिलोसॉफिकल अर्थ निकालें, और ये बहुत ही फिलोसॉफिकल अर्थ वाला अंश भी है, तो मुझे दो बातें मालूम पड़ती हैं। पहली बात है अप्रतिरोध की ताकत। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम अपने ताकत का प्रदर्शन किसी चीज का प्रतिरोध करके ही कर सकते हैं, अप्रतिरोध में भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसा कि यहां आपने देखा कि हाइकुन ने किसी चीज का प्रतिरोध नहीं किया, किसी चीज का विरोध नहीं किया, किसी चीज का खंडन नहीं किया। और जो दूसरी बात मुझे मालूम पड़ती है वह यह कि जो क्षण जैसा है उस क्षण को वे उसी रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनके दिमाग में कोई ये बात नहीं आ रही है कि यह अच्छा है या बुरा है। और सच पूछिए तो जिसके दिमाग में यह बात आएगी ही नहीं कि यह अच्छा है या बुरा है, चाहे वो मुझ पर ही इतना बड़ा इल्जाम क्यों ना लगाया जा रहा हो, तो वही अप्रतिरोध की स्थिति में आ सकता है। अदरवाइज तो हमारा अहम तुरंत फुफकार मारने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यानी कि जो क्षण है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस क्षण में, उसमें हम शामिल नहीं है, उसका हम हिस्सा नहीं बन रहे हैं, उसे बस देख रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं कि क्या ऐसा है। दोस्तों नो डाउट कि यह जो अंश है वो थोड़ा सा गहरा अंश है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा उबाऊ भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे गहरे अंशों से भी हम लोगों का साक्षात्कार होना चाहिए। तो अब मैं इस कहानी पर निष्कर्ष निकालने का पूरा दायित्व मित्रों आप सब पर छोड़ता हूं और इसी के साथ ही इजाजत भी मांगता हूं। नमस्कार।